The following is a lecture on Dhavagnipan and Raj Pravesh from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 19, verses 10 through 14, on the topic of the boys cry out to Krishna and Balaram to save them. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India, on May 7th, 2000.
संसार में अगर कोई मृत्यु को पार करना चाहता है, दुखों से पार होना चाहता है, तो भगवान श्री हरि के चरण कमल के बिना और कोई आश्रय नहीं। तो जो महान लोग हैं, भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, न कि अपने को ही विष्णु कहना चालू करते हैं। जिसकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है, वही कहता है कि मैं विष्णु हूं, मैं भगवान हूं। और भ्रष्टाति भ्रष्ट बुद्धि जिसकी है, वो ऐसे लोगों को भगवान मान लेता है। सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं तो कहते हैं कि मृत्यु भय से, संसार भय से व्याकुल होकर के साधक जन भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं वो इस अवसर पर। दूसरे की शरण नहीं ले सकते, दूसरा क्या करेगा। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में भवाटवी वर्णन में लिखा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा हो, वणिक समुदाय, और सामने सिंह को आते हुए देखे, सिंह के कुछ बच्चे, सिंह की स्त्री और सिंह के साथी, और डर जाए, तो काल चक्र को ऐसे कहा गया है। काल जैसे साल है, वर्ष है, छह महीना, सप्ताह, मास, ये सब सिंह के समान हमारी आयु को खा रहे हैं। तो सिंहों के डर से, उनसे भयभीत होकर के और बचने के लिए वो समूह, वो क्या करता है वणिक समूह, कि जाकर के कंक, गीध और बटेर की शरण लेता है। मान लीजिए उधर से सिंह आ रहे हैं झुंड के झुंड, और उनसे कोई डर जाए, कांप जाए, आह बाप अब तो नहीं बचूंगा, तो किसी बगुला की जाकर शरण लेगा कि सरकार बचाइए, गिद्ध की शरण लेगा, क्या वे सिंह के आक्रमण से बचा सकते हैं, बताइए। तो ऐसे व्यक्ति की शरण लो जो सिंह से कई गुना बलवान है, तब तो बचाएगा। यह काल चक्र जिनका आयुध है, जिनके हाथ में काल शक्ति है, उस विष्णु की शरण लेने पर तब बच सकते हैं। किसी देवता की या अन्य किसी भी मानसिक कल्पित ब्रह्म है या किसी की भी शरण लेने पर जीव मुक्त नहीं हो सकता है। तो काल चक्र से भयभीत होकर के लोग किसी देवता की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये मनाते हैं, इसको करते हैं। कभी कभी तो लोग कहते हैं गुरु ही हमारे लिए भगवान है, ये है, वो है। तब तो तुमको मरना निश्चित है, संसार में ही रहना है निश्चित है। सभी शास्त्र कहते हैं, पुराण, स्मृति आदि, सूरदास जी ने कहा है कि भव समुद्र हरिपद नौका बिन को न उतरे पार। सबको यह मत सार ऊपर है, और भव समुद्र हरिपद नौका बिन को न उतरे पार। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, बार मथे घृत होई बरु सिकता ते बरुतेल, बिनु हरि भजन भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। हो सकता है कि बालू के, रेता के पेरने से तेल निकलने लगे, यह असंभव चीज है, कभी भी तेल नहीं निकल सकता है। अगर रेता पेरने से तेल सरसों का या अलसी का निकलने लगे, तो क्या जरूरत है इतना संकट सहने। असंभव है, बालू को कोई कितना भी पेरे, तेल नहीं निकल सकता। लेकिन हो सकता है कि ये भी असंभव संभव हो जाए, बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरु तेल, और हो सकता है कि पानी के मथने से घी निकलने लगे, जैसे दूध के मथने से निकलता है। ऐसा हुआ नहीं आज तक, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सकता है कि पानी के मथने से घी निकलने लगे और बालू के पेरने से तेल निकलने लगे, लेकिन बिना कृष्ण के भजन के कोई भवसागर तर जाए, यह नहीं हो सकता है। हुआ है न हो सकता। तो वही सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी कहे हैं। वास्तव में ये सुखदेव गोस्वामी नारद जी आदि यही तो मूल प्रमाण है आचार्य, जिनके अनुसार आजकल के भक्त बोलते हैं मृत भयातुरा जना, संसार में वास्तव में बहुत बड़ा भय है, शरीर छूट जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा, फिर वहां रोग दुख भूख प्यास, बहुत बड़ा भय है। इस जन्म मरण के भय से व्याकुल होकर के सुकृति जन भगवान विष्णु की शरण लेते हैं और वे प्रभु तुरंत रक्षा कर देते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः, शोक मत करो मैं रक्षा करूंगा, सब पाप से मुक्त कर दूंगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित जतन्ति ते तद ब्रह्म विदुह कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिन। भगवान कहते हैं बुढ़ापा के दुख से और मरण से भयभीत होकर के जो लोग मेरी शरण लेते हैं वही समस्त वेदों के ज्ञाता है और वही सारा कर्म कर चुके वेदों में जो वर्णित है करने के लिए। इस प्रकार के उदार वाक्य भगवान बोल रहे हैं। भगवान की शरण लेना बहुत बड़ा कार्य है। तो इस जीवन में जिन लोगों ने यह पहचान लिया है कि भगवान विष्णु कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, भले अपना अपना स्वभाव भिन्न है कमजोर है, लेकिन जब स्वीकार कर चुका मन कि कृष्ण ही भजनीय है तो बहुत बड़ा काम हो गया। समझिए यह निर्णय कि कृष्ण मोर प्रभु त्राता, कृष्ण हमारे प्रभु हैं और हमारे रक्षक हैं, यह मन में एक बार आ गया तो आधा से अधिक काम हो गया। जो जीवन में करना है वो हो चुका है। इस प्रकार का निर्णय आना कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और कृष्ण मेरे प्रभु हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे साधक मुमुक्षु जन संसार ज्वाला से दग्ध होकर भगवान की शरण लेते हैं, उस तरह से गोप बच्चे कृष्ण की शरण लिए बलराम जी के साथ। तो इस प्रकार कहने लगे प्रपन्न जथा हरि मृत भयार्दिता जन, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा, दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नान स्त्रातुमर्हतः। कृष्ण कृष्ण जानते हैं बच्चे कि कृष्ण का नाम कीर्तन करने से सारा दुख मिट जाता है। विप्सा इसको कहते हैं संस्कृत में। दो बार कृष्ण कहा गया तो इसका अर्थ बहुत बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अथवा यह भाव है कि दो बार कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण स्पेशल ध्यान देगा हमारी दुर्दशा पर, शायद एक बार में ध्यान न दे। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण महावीर, हे महान वीर, कालिए का दमन किए हो और सब किए हो महावीर हो, तुम्हारी वीरता विख्यात है कृष्ण। और हे राम, तुम धेनुकासुर का वध किए, प्रलंब का आज ही वध किए हो, तुम्हारा अमित विक्रम। प्रमाण है बच्चों के पास भगवान कृष्ण और बलराम जी के वीरता का, पराक्रम का, बिल्कुल फ्रेश ताजा है, आंखों से देखे है सब प्रभाव। हम लोग तो आंखों से नहीं देखे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के शब्दों की आंख से, शास्त्र चक्षु से हम लोग भी देखते हैं, पर कुछ लोग इतने ब्लाइंड हैं कि कुछ भी भागवत में लिखा हो नहीं देख सकते। अब क्या किया जाए, क्या करें भगवान। एक शब्द भोजपुरी में लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ समझा रहे हैं और नहीं समझ रहा है, तो कहता है व्यक्ति भोजपुरी भाषा में, हम अपना समझौनी नहीं समझे तब का कर घोर के पियाई। क्या किया जाए, भागवत का जूस बनाकर इसको कागज को पिला दिया जाए क्या, तब जानेगा। तो अब क्या किया जाए, क्या घोर कर पिलावे। बहुत सुंदर बात कहते हैं सार्वभौम जी। एक बार कहते हैं, एक बार कोई ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को खिला रही थी। गर्मी का दिन था, भोजन बनाई कई तरह का, और इसके बाद भगवान को भोग लगाई और खिलाने लगी पति को। तो पति पता नहीं रोज वैसे होते थे, अब उसी दिन स्वयं नहीं खा रहे थे। वो कहे कि हमारे मुख में डालो। तो पत्नी पंखा भी झल रही थी और शान शान कर उनके मुख में कवर दे रही थी, फिर भी पति को पसीना आ रहा था। पत्नी पूछती है, कहती है, मैं भोजन बनाई इस गर्मी में, इतना मेहनत की और भोग लगाई परसी आपको और शान करके दे रही हूं, फिर भी आपको पसीना आ रहा है, मैं पंखा झल रही हूं। तो पंडित जी कहते हैं, और चबा तुम्हारा बाप रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूं चबाने में और कहती है कि पसीना है। बाप रे, इतना मेहनत कर दिए। चबाने में मेहनत कर रहे हैं। अरे भैया, भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यानी पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और कहेंगे हम बहुत भारी मेहनत कर रहे हैं, कुछ जॉब कर लेते हैं, बहुत भारी मेहनत की, अब क्या करें, अब कितना करें। अरे बहुत करना है इस संसार में भगवान को समझने के लिए। तो पहले तो भगवान वेदव्यास देव ने जो दिया है कृष्ण चरित श्रीमद भागवतम पूरा, ये पढ़ने के लिए दिया है। लिख करके वेद व्यास जी कहते हैं कि जो इसे सुनेंगे उनके हृदय में कृष्ण बंदी हो जाएंगे, दुख शोक भय चला जाएगा। इसके बाद भी कहते हैं पीबत पियो पियो, या केवल पृथ्वी पर सुलभ है, लेकिन फिर भी मेहनत नहीं करते हैं और कृष्ण पर अनेक प्रकार की आशंका करते हैं और अनेक इष्ट देव बना लेते हैं और इधर उधर भिन्न भिन्न प्रकार के, ये मति भ्रम है वास्तव। अतः उन लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो श्री कृष्ण को अपने प्रभु और रक्षक के रूप में स्वीकार किए। ये बहुत बहुत सुकृत का फल है। नमाम दुष्कृत नो मुद्धा प्रपद्यन्ते नराधमा, दुष्कर्म जिन्होंने किया है पूर्व जन्मों में वे मुझे नहीं समझ सकते हैं, वो मेरी शरण नहीं ले पाएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन, जो सुकृति हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में सुकृत किया है, पूर्ण किया है, वे लोग मेरी शरण लेते हैं। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। तो बच्चे कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, कृष्ण के श्रेष्ठता को, वीरता को, बलराम जी के अमित पराक्रम को स्वीकार कर रहे हैं। आज जीवन में संकट आ चुका है, मरने की स्थिति है, कृष्ण का संग सदा के लिए छूट जाएगा, तो कृष्ण की संगति रहे और उसी तरह से कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते रहें, इसके लिए बच्चे जीना चाहते हैं और वे कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नास्त्रातुम अर्हत, हे कृष्ण हे बलराम आप दोनों महान वीर हैं, महान पराक्रमी हैं, इस दवाग्नि से हम जल रहे हैं। दवाग्नि ना दह्यमाना, हम जल रहे हैं मतलब आप नहीं रक्षा करेंगे तो हम निश्चित भस्म होने वाले हैं। दह्यमानम प्रपन्नास्त्रातुम अर्हत, हम आपके शरण में हैं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। प्रपन्ना प्रपन्न कहकर कहते हम सब तरह से तुम्हारी शरण में है, तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे सखा है इत्यादि। नूनं त्वद् बांधवः कृष्ण न चारहं अवसीदतु, हे कृष्ण हम तुम्हारे बंधु हैं। त्वद् बांधवः मतलब हम यदि मर जाएंगे तो तुम कैसे रहोगे अकेले, तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारे साथ कौन खेलेगा, यह भाव है। हम तुम्हारे बंधु हैं, हम तुमको सहायता देने वाले हैं, तुम्हारे लिए सहारा है, ये आंतरिक अर्थ यह है। तो हम यदि नहीं रहेंगे तो तुम बंधुहीन हो जाओगे, अनाथ हो जाओगे। नूनम तद बांधवा है कृष्ण न चारहं तव सिद्ध तुम, तो तुम्हारे कोई भी बंधु तुम्हारे साथ किसी भी तरह का किसी का कोई संबंध है तो उसको दुख नहीं होना चाहिए। तो जैसा भी हो, हमने जोग माया पूर्णमासी जी के मुख से सुना है, और भी उनके पुरोहित थे नंद बाबा के, क्या नाम था उनका, भांगुरी ऋषि। तो ये कभी कभी ब्रज में श्री कृष्ण की महिमा की बात बताते रहते थे, और पूर्णमासी जी भी बताती थी, ये जोग माया का अवतार था। तो इसलिए बच्चे जानते हैं और कहते हैं तुम्हारे जन को दुख नहीं होना चाहिए, जैसा हमने सुना है बड़े बड़े लोगों के मुख से। जो तुम्हारा जन नहीं हुआ है उसको ही दुख होता है संसार में। ब्रह्मा जी भी कहते हैं स्तुति करते हुए, जावत कृष्ण न ते जन है शुरू में, तावत रागा दयोस्तेना तावत कारा गृहम गृहम तावन मोहंग्री निगडो जावत कृष्ण न ते जन। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण जब तक जीव आपका नहीं हो जाता है तभी तक ये राग आदि चोर की तरह विवेक धन को लूटते हैं, और तभी तक यह कारागृह, यह गृहस्थी कारागृह है किसी मनुष्य के लिए, जब तक वो आपका नहीं हो जाता और तभी तक अहंता और ममता की बेड़ी पैर में रहती है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। यदि भगवान का जीव हो जाए तो राग भी सहायक हो जाता है। राग द्वेष जो दूसरों को गड्ढे में गिराने वाले हैं वो भक्तों के लिए सहायक हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि आसक्ति में पड़ करके भी कोई व्यक्ति भगवान के प्रति आगे बढ़ता है, उनका भजन करता है। तो राग देख रहे हैं, बच्चों का राग, गोवत्सों का राग ब्रह्मा जी ने देखा था, कृष्ण के प्रति उनका राग था, और मोह, यह मेरा है, ये हमारा, ये मेरा है, यह मैं हूँ, ये है वो है, कृष्ण से संबंधित राग द्वेष आदि होते हैं तब तो वही पार कर देते हैं। और ये घर गृहस्थी या कारागृह है वास्तव में जीवों के लिए, बल्कि उस प्रसिद्ध कारागृह से और भयावह है। जो प्रसिद्ध कारागृह हम लोग सुनते हैं देखते हैं तो उसमें तो बहुत बड़ा प्राचीर होता है और उसके ऊपर भी बिजली के तार कहीं कहीं रखते हैं कि कोई कैदी भाग ना जाए, कंटीला तार रखते हैं और फाटक पर संतरी रहते हैं, गिन गिन करके रूम में बंद रखते हैं। फिर भी कभी कभी सुना गया है कि कैदी भाग गए हैं, और मान लीजिए किसी दिन फाटक बिल्कुल खोल दिया जाए, कोई पहरेदार न रहे, कुछ न रहे, तो एक भी नहीं रहेगा उसमें। परंतु यह कारागृह कि कोई संतरी नहीं है द्वार पर, कहां जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई प्राचीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन घर से निकलना कठिन है। कितने ऐसे कैदी हैं जो केवल आज ही आए, 7 दिन 6 दिन कारागृह से मुक्त नहीं हो पाए, या कल आए। असली कारागृह है कि नहीं, कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हंसी हुई और मोह की बेड़ियां, ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, तावन मोहंग्री निगढ़, ये मोह जो है यही अंग्री निगढ़ है, पैर का बंधन है निगढ़, चलने ही नहीं देता है। बहुत जोर लगा करके तब 1.5 दिन के लिए आए, कल दोपहर से और आज 1 दिन, ठीक है। लेकिन यहां मैं उन भक्तों के लिए नहीं बात कह रहा हूं, केवल समझाने के लिए थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि आप सब तो कृष्ण के हो चुके हैं, तो घर पर भी रहते हैं तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, इसलिए यह दृष्टांत आप पर लागू नहीं हो रहा है, परंतु समझने के लिए मैं निकट उदाहरण दे रहा हूं। और ज्यों ही यह सत्र समाप्त होगा त्यों ही कारागृह में पुनः हाजिर कर। तो ब्रह्मा जी कहते तावत कारागृहम गृहम, तभी तक है कृष्ण यह गृहस्थ का जीवन कारागृह है, जावत ते न, जब तक आपका जीव नहीं हो जाता। आपका हो जाने पर फिर घर गृहस्थी कारागृह नहीं है, वही मंदिर हो जाएगा, वो भगवान का धाम हो जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं राधा श्याम सुंदर जी यहां विद्यमान है, यह गृहस्थ की ड्यूटी है, घर पर सेवा करते हैं, यहां लाकर के सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या घर कारागृह रहेगा। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने घर पर कृष्ण को रखते हैं, भजन करते हैं, भोग लगाते हैं, कुछ जप करते हैं, भगवान के प्रचार के लिए कुछ सहायता करते हैं, तो उनके लिए क्या कमाना है और घर गृहस्थी रखना कारागृह हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, वो तो कृष्ण के बंधु हो गए, बांधव हो गए। किसी तरह से कृष्ण से थोड़ा भी संबंध हो जाए तो कृष्ण उसको बढ़ाते ही रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं, तोड़ते नहीं है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोते तोरी न छोरी जाए, थोड़ा सा हल्का भी कोई अपने चित्त को कृष्ण को दे तो कृष्ण उसे तोड़ते नहीं और उसे मजबूत करते जाते हैं, और जगह का बंधन तोड़ देते हैं। और जो लगा हुआ है बड़ा बड़ा बंधन, वो धीरे धीरे टूटने लगता है और कृष्ण के साथ लगा हुआ बंधन दृढ़ होने लगता है। तो तद बांधवा, कितना सुंदर शब्द बच्चे बोल रहे हैं, हम आपके बंधु हैं और आपके बंधु को, आपके संबंधी को, आपके भक्त को दुख नहीं होना चाहिए। और इस तरह से दुख होगा तो क्या हो जाएगा? तब लोग आपकी शरण नहीं लेंगे। यदि आपका भक्त होकर के भी कोई व्यक्ति संसार में दुखी रहे तो फिर कैसे लोग आपकी शरण लेंगे, आपसे प्रेम कैसे करेंगे? आपसे प्रेम तब लोग करेंगे जब देखेंगे कि अमुक ने प्रेम किया तो उसको कोई दुख नहीं है, वो अवसाद में नहीं है। तो सिद्धांत बोल रहे हैं बच्चे कि हे कृष्ण, तुम्हारे बंधु को, तुम्हारे से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं और बड़े लोग कहते हैं। नूनम त्वद बांधवा कृष्ण न चारहं तव सेवितु, वयम ही सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथस्त त्वत्परायणा। किसी भी तरह से आपसे थोड़ा संबंध भी हो तो उसको दुख नहीं होना चाहिए। फिर हम तो त्वन्नाथा त्वत्परायणा, हम तो ऐसे हैं, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी शरण हो। अथवा सारस्वत अर्थ इसका यह है, कृष्ण हम ही तुम्हारे नाथ हैं, हम ही तुम्हारे परम शरण हैं, आयन हैं। हम नहीं रहेंगे तो तुम कैसे रहोगे, तुम अनाथ हो जाओगे। क्योंकि एक दिन भी यदि कोई बच्चा खेलने के लिए नहीं आता है तो कृष्ण उसके लिए तड़पने लगते हैं, मेरा वो सखा नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं, इस तरह से बोलते हैं। तो कृष्ण बिना गोपों के रह ही नहीं सकते। सरस्वत अर्शिष कहे थे त्वन नाथ, हम तुम्हारे नाथ हैं, और त्वत्परायण, हम तुम्हारे परम आयन हैं, आश्रय हैं। और वैसे डायरेक्ट अर्थ है कि आप हमारे नाथ हैं और आप ही हमारे परम शरण हैं, तत्कालिक अर्थ है, यही अच्छा लग रहा है। लेकिन वास्तव अर्थ तो सरस्वत अर्थ है कि हम तुम्हारे नाथ हैं, हमसे तत्पर आज हम सब गोप हैं और गौए हैं, गौए नहीं रहेंगी, मर जाएंगे, किसका दूध पियोगे, कैसे रहोगे, हमारे बिना कैसे रहोगे, यह अर्थ ध्वनित हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। और भी बड़े बड़े गोप थे जो वन के अनुभव से युक्त थे, तो इसलिए त्वन्नाथ और परायण शब्द का यह अर्थ ठीक बैठेगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बच्चो निशम्य कृपणम बंधु नाम भगवान हरि। अपने बंधुओं के वचन को भगवान सुने, भगवान हरि। जब उन बच्चों ने कहा कि मृत्यु भय से अर्दित होकर भक्तजन हरि की शरण लेते हैं, तब हरि को स्मरण आ गया कि मैं हरि हूं। हरि, हरि का क्या अर्थ है? वैसे मैं सबके दुख का हरण करता हूं, केवल नाम मात्र का भी हमारे साथ संपर्क हो जाए तो मैं उस भक्त का दुख हर लेता हूं। और फिर ये तो हमारे बंधु हैं, मेरे जीवन के आधार है, हमारे सब कुछ है, इनका क्यों नहीं हरूंगा। भगवान के मन में तत्काल विचार आया और अपनी अशेष भगवत्ता याद आ गई ध्यान में। अरे मैं तो अनंत शक्ति से युक्त हूं। पहले जो गायों को खोज रहे थे और दीन भाव से गौओं को बुला रहे थे, वो भाव भगवान का चला गया तुरंत। अब यहां पर उस भाव की आवश्यकता नहीं है, अब तो भगवान हरि अपने शरणागत के दुख को हर लेते हैं। किसी तरह से संपर्क हो जाए तो दुख हर लेते हैं, और कोई कुछ भी ना करे, अनजान में भी हरे कृष्ण जपे तब भी दुख हर लेंगे, जैसे अजान मिलकर हर लिए। कोई जान बुझ करके उसने संबंध नहीं किया था, परंतु भगवान का नाम अनजान में लिया था, यह एक प्रकार से संबंध हो गया था उसका, तो इससे भगवान ने उसका दुख हर लिया। तो हरि है सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मान, सारा अमंगल दूर कर देते हैं भगवान। तो सारी गोप घबरा रहे थे, मरने से डर रहे थे, आग को बता करके कह रहे हैं यह आग बढ़ रही है, और भगवान जब उनकी व्याकुलता देखे तो वे द्रवित हो गए, उन्हें अपने अशेष ऐश्वर्य का स्मरण आ गया। और उस दशा में भगवान ने कहा, इसके पहले बच्चे सर्वधर्मज्ञ कह रहे हैं कृष्ण को, मैं भूल गया था व्याख्या। सर्वधर्मज्ञ का अर्थ है किस अवसर पर क्या करना कर्तव्य है कृष्ण, इसको तुम खूब अच्छी तरह से जानते हो। इस अवसर पर तुम्हारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, मतलब हमारी रक्षा, क्योंकि तुम में अनंत ऐश्वर्य है, तुम में बल है, तुम जब चाहते हो तब अपने मन से काम कर लेते हो। जब कालिए को इस तरह पस्त करके आ गए तो क्यों नहीं हम विश्वास करें कि तुम सर्व समर्थ हो, और जब जिस मौके पर जो काम करना चाहिए तुम जानते हो करना है। इसलिए हे सर्वधर्मज्ञ, इस अवसर पर हमारी रक्षा ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। सर्वधर्मज्ञ शब्द का अर्थ रक्षा कर। तो भगवान इस तरह उनकी बात सुने, कैसी बात, कृपणम, दीन वचन बोल रहे थे, बहुत शोक में दुख में बोल रहे थे। एक तो अपने बंधु हैं, रात दिन जिनके साथ रहना है, खेलना है, खाना है, वही, और वो भी दीन भाव से बोल रहे हैं। तो भगवान तो दूर से भी, कोई गजेंद्र जैसा भगवान को पुकारे तो उसकी भी रक्षा करते हैं, और ये अपने साथ ही अपने प्राण के समान बच्चे रो रहे हैं तो क्यों नहीं रक्षा करेंगे। तो भगवान ने कहा, निमीलयत लोचनानि, आंख बंद करो, आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद कर लो। तो पता नहीं कौन सा जादू करना चाहते हैं, आंख बंद कर लो, पहले कहे आंख बंद कर लो। तो सुनना था कि जितने गोप थे सब आंख बंद कर लिए, जानते थे कोई ना कोई विधि निकालेगा कृष्ण रक्षा की, तो आंख बंद करवाए, सब आंख बंद करके खड़े। मुनि ले तो मां भैष्ट, भय मत करो, भय मत करो, डरो मत, डरो मत, अग्नि की ज्वाला से तुम दग्ध नहीं हो पाओगे, डरो मत, आंख बंद करो, आंख बंद करो। तो भगवान की बात सुनते ही सब विश्वास करके आंख बंद कर लिए। आंख क्यों बंद कराए भगवान? इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने गोपों को आंख बंद करने के लिए इसलिए कहा कि वे आग को पीना चाहते थे, एक बार तो वे ध्यान नहीं दिए थे, कैसे आग बुझ गई अच्छा से नहीं देख पाए होंगे, लेकिन इस बार डायरेक्ट देखेंगे कि कृष्ण आग पी रहे हैं, तो शायद इस दुख में वे स्वयं ही दवानल में जल बन जाए। कृष्ण के भीतर आग घुस गया तो कृष्ण का भी नुकसान करेगा, इस कारण से ये स्वयं ही जल सकते थे। अथवा कृष्ण के उस सुंदर मुख में आग जाए, इसको कैसे सहन कर सकते थे। इसलिए भगवान ने सोचा कि इनसे आंख बंद करा करके पब पीऊंगे, ये न देखे कि आग क्या हुआ। वास्तव में वे गोप नहीं जाने कि आग कहां से खत्म हो गई, कौन फायर विभाग आया, क्या किया, कैसे आग बुझ गई, खत्म बिल्कुल, थोड़ा न धुआं रह गया न जला हुआ एक तीर्ण भी काला कहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि जहां आग लगी थी वहां उस स्थान पर वो थे भी नहीं। आंख जब खोलने के लिए भगवान ने कहा तो वो देखे कि भांडीर वट के पास है, जहां खेल रहे थे वहां है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए भी कि वे कोई आश्चर्य न करें, आंख बंद करेंगे और एकाएक आंख खोलेंगे तो देखेंगे कि भांडीर वन में है, सुख से भी वहीं पर है। ने आंख बंद करने के लिए कहा और बच्चे आंख बंद कर ले, तो हरीश्वरी जी इस पर कहते हैं इस जगत में भीषण से भीषण संकट से दुख से बचने के लिए योग का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ने भी गीता में बार बार कहा है योग से दुख खत्म हो जाता है। योग का अर्थ आज का योगा नहीं योग मतलब संसार की ओर से दृष्टि हटा करके नेत्र बंद करके भगवान के रूप में मन लगाना, इसको योग कहते हैं। तो शायद भगवान ने सोचा कि बिना योग के इनका दुख समाप्त नहीं होगा, तो योग का जो एक अंग है आंख बंद कर लेना, वो भगवान ने बताया आंख बंद करो योग का आश्रय लो, ये ठीक उत्प्रेक्षा है। आंख बंद करवाया और एक भाव हरीश्वरी जी लिखते हैं कि भगवान उस बार सामने आग पी गए थे और इस बार आंख बंद करा करके आग पी रहे हैं। तो भगवान यह कहते हैं कि मैं भक्त के सामने और परोक्ष में सब समय उसका हित करता हूं, चाहे वो देखे या न देखे, सर्वत्र मैं उसका हित करता हूं। स्थूल दृशो खिला अपि गवाम पाला सभीत्यंतरा, ये सभी स्थूल दृष्टि वाले हैं गोप, मतलब बाहर देखने वाले हैं, और क्योंकि गवाम पाला है, गौओं के पालक है, बेचारे पशुओं के साथ रहते हैं इसलिए इनको बहुत बुद्धि नहीं है, जैसी संगति करेंगे वैसी ही बुद्धि रहेगी ना। तो गायों के साथ रहते हैं तो स्थूल बुद्धि है, गोप है सीधे साधे, और सभीत्यंतरा और उस पर भी भय से युक्त है हृदय, हृदय में भय समा गया है। वह निश्चय से दुरंत कीलक कलित तत्रात जोगम बिना, और यह आग भी बहुत भयानक है। एक तो ये गोप है, गौओं का पालन करते हैं, भय समाया है हृदय में, आग भी भयानक है। तो भगवान ने सोचा योगम बिना एतत् शांति रसाद दोषम धृषम अमीशाम चेत कलम चिंतम, भगवान ने सोचा बिना योग के आश्रय के इनका दुख समाप्त नहीं होगा, इसलिए उनसे योग करा रहे हैं, योग करो, आंख बंद करा रहे हैं। आंख केवल बंद कर लेना ही योग नहीं है, लेकिन भगवान मानो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि भाई योग का आश्रय में, इसलिए आंख बंद कराए। अच्छा, भवात्मीयम विकट स्वरूप तापोपी तस्याम विषयाग्नि जात स्वदिग गृहीत नचवास्तो अवास्तोस्ति इत्यभूत स्फुटम नेत्र निमीलनोक्त्या। भगवान ने आंख बंद करने के लिए कहा गोपों को, और आंख खोलने के लिए बाद में कहा, जब आग शांत कर लिए, भंडी वट में सबको ला दिया ऐसे ही, तो देखे कि हम जहां थे वहां थे। तो हरीश्वरी जी कहते हैं वास्तव में यह संसार विकट उनके लिए है और तापद है जिनकी आंख संसार की ओर है, लेकिन संसार की ओर से आंख बंद करके जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण का चिंतन करे तो उनके लिए न तो कोई आग है न संसार है, वो दृश्य भी खत्म हो गया वो दृश्य भी खत्म हो गया मुंजाटवी का और आग भी खत्म, दोनों वो देखे कि हम अपने स्वरूप में हैं, जहां थे वही है। वास्तव में जीव संसार से मुंह फेर करके और भगवान की बात माने, गीता उनकी बात माने, भगवान का आंख बंद करो, आंख बंद करो का मतलब ये आग और संसार देखो ही मत, नहीं देखोगे हमारी बात मानोगे और हमारा चिंतन करोगे। तो बात मानने का अर्थ है कि वे लोग ये सोच रहे थे कृष्ण क्या कर रहा होगा, आंख बंद करके वे लोग कृष्ण लीला का ध्यान कर रहे थे, ताप और संसार का नहीं। भगवान ने कहा कि आंख बंद करो तो बच्चे अंदाज से कुछ सोच रहे होंगे कृष्ण पानी डालेगा, फूकेगा, क्या करेगा आग पर, कुछ सोच रहे थे। तो हरिश्वरी जी के कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति संसार की ओर देखता है और भय करता है, कुछ भी करता है, तो वो जलेगा और संसार रहेगा। लेकिन जो भगवान का आदेश मान करके उनकी लीला का चिंतन करेगा, संसार से आंख फेर लेगा, तो उसके लिए न ताप है न संसार। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है। और कहते हैं विधाय व नेत्रा पिधानम ही तेसा जदैसी तदीयम प्रियम कर तुमीश दुरंतार्थी दाग्नि प्रशांत्या तदस्मात् परोक्षा प्रियत्वम स्वमाविष्टकार। भगवान ने कहा कि नेत्र बंद करो, तो नेत्र बंद करा करके भगवान जो उनके ताप को दूर किए, तो इसके द्वारा भगवान ने यह बताया कि मैं परोक्ष प्रिय हूं। ऐसा भागवत में कहा गया परोक्ष प्रियो हरि, भगवान परोक्ष प्रिय हैं। मतलब है इन समस्त जीवों से अलग रह करके ही कुछ करना चाहते हैं, बड़े गूढ़ लीलाएं हैं उनकी, सबके आंख के सामने वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। परोक्षवाद जब नारद जी राजा प्रसून पर ही से कहते हैं तो नारद जी कहते हैं कि परोक्ष प्रियो हरि, भगवान परोक्ष प्रिय है, इसलिए मैंने आपसे परोक्ष में कथा कहा है। डायरेक्ट कुछ कहने से भगवान अच्छा नहीं मानते, परोक्ष में कहना चाहिए। तो पुरंजन का इतिहास कह करके आत्मा और देह के अंतर को समझाया, तो परोक्ष प्रिय हैं भगवान। और इसके द्वारा उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि मैं अपने जनों का हित करता हूं ज्यादा परोक्ष में, जैसे सुदामा जी को उन्होंने धन दिया, उनका हित किया, तो बिना सुदामा जी के जाने, सुदामा जी गए थे द्वारका, उधर से भगवान विदाई में एक पैसा भी नहीं दिए। कभी कभी रासलीला करने वाले दिखाते हैं कि सुदामा जी बहुत दोष दृष्टि करते हुए आ रहे हैं, यदि यह बात सत्य नहीं है, लेकिन विनोद में कहते हैं। सुदामा जी कहते हैं आखिर जो चोरी किया खाने पीने की, तो देने का स्वभाव नहीं बना कृष्ण बताइए, इतना बड़ा वैभव है लेकिन केवल भोजन करा करके विदा कर। लेकिन ऐसा उन्होंने सोचा नहीं, फिर भी भक्त लोग अनेक भाव करते हैं, तो उसी के अनुसार एक और लीला सोच लेते हैं। रास्ते में एक डाकू मिला और सुदामा जी को रोका, सुनो सुनो एक दसवीं मिला और कहा द्वारका गए थे ना, तो सुना हूं कि धन के लिए गए थे, वो धन कहां लाए हो। तो सुदामा जी तो कांपने लगे लगे कहने कि हमको कुछ मिला नहीं भैया, मैं तो मेरे पास जो है कपड़ा वो ही रह गया फटा पुराना है, और कुछ मिला नहीं। नहीं मिला देखता है, तो देखा नहीं मिला तो कहा कि आज तुम्हारी जान छोड़ देता, नहीं है तुम्हारे पास धन, नहीं तो धन भी लिया होता जान भी मारा होता। तब सुदामा जी सोचने लगे ओहो द्वारकाधीश कितनी महान है, हमारी प्राण की रक्षा किए, हमको कुछ नहीं दिए, अच्छा किए। ऐसे भागवत की कथाएं नहीं है लेकिन भक्तों के मानस की कथाएं है मन में उत्पन्न होती है। लेकिन भागवत में लिखा गया है कि सुदामा जी सोचते हैं कि हमारे प्रभु हमको धन नहीं दिए, जानते हैं कि धन पा करके यह विषय भोग में पड़ जाएगा और यह ब्राह्मण तपस्या नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, भोग में पड़ जाएगा, तो हमारा हित करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। यह कहते हुए जा रहे हो और जाने पर जब दिव्य दूसरा द्वारका जैसा नगर दिखाई दिया तो वो सोचने लगे कि रास्ता भूल गया क्या, फिर द्वारका आ गया है। और कुछ दृश्य मिलाकर कह रहे हैं तो कहते नहीं द्वारका नहीं है, तो शोक करने लगे कि कौन कॉम्प्लेक्स बना दिया, कौन यहाँ बिल्डर आया, हमारी कुटिया किधर फेंक दिया, कि थोड़े समय में क्या हो गया, कहाँ गईल हमार राम मड़ैया, कहवा के भूप उतरी, सुदामा मंदिर देख डरी। सुदामा जी भवन को देख कर डर गए, कोई राजा आ गया, हमारे झोपड़पट्टी को झुग्गी को कहाँ फेंक दिया, वे सोचने लगे। लेकिन जब निकट आए तो उनकी पत्नी पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी रुक्मिणी जी के समान, और हाथ में थाली लेकर के आरती सजा करके आने लगी सखियों के साथ। ये तो पहचान लिए, बाद में पता लगा सुदामा जी को कि भगवान का सब कुछ दिया हुआ है। तो उस समय सुदामा जी ने कहा है कि हमें वैभव नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन्मनी जन्मनी शब्द आया है भागवत मुनि, हमारे जन्म जन्म में कृष्ण मित्र रहे, सखा रहे, बस मेरी यही इच्छा है। वहां वो कहते हैं कि जैसे बादल रात्रि में किसानों के सो जाने पर ज्यादा बादल वर्षा करते हैं, उस तरह से हमारे अनजान में भी हमको धन दिए, धन है द्वारका नाथ। तो भगवान परोक्ष में अधिक हित करते हैं भक्तों का, शायद सामने करेंगे तो एहसान मानेंगे, इस लज्जा के कारण परोक्ष में करना चाहते हैं। जो परोक्ष में हित करे वही अपना बंधु माना गया है, सामने तो सभी दिखाने के लिए कर देते हैं। मान लीजिए आप उस बंधु के पास नहीं है, अपने मित्र के पास, और वह आपकी प्रशंसा कहीं कर रहा है, वह बहुत अच्छा है, ये है वो है, ये आपके जोखिम की चिंता कर रहा है, तो वह ज्यादा महत्व की बात है। तो इस कलयुग में तो ज्यादा ऐसा है कि सामने प्रिय वचन है, हितैषिता का भाव दिखाते हो और थोड़ा सा दीवाल पार करते ही निंदा चालू कर देते, ये कलयुग का दोष है। वास्तव में मनुष्यों में बहुत बड़ा दोष आ गया। तो भगवान परोक्ष प्रिय हैं, परोक्ष में हित करते हैं। अच्छा, दूसरा आंख बंद करने का भाव लिखते हैं। ये नन्य भाव सरणी कृतमत पदाब जहा तत्ताप भी तपहता वहम अस्मी, सपने में गलत हो गया, तत्र स्वयं ध्रुव मनेत्र पिधान भावा कारुण्य शालिनम मन से दम बोधि बीजम। समझ में नहीं आया। अच्छा, भगवान आग क्यों पिए, आग बुझाने का तरीका क्या भगवान को और कुछ मालूम नहीं था? हरिश्वरी जी लिखते हैं इस पर बहुत भाव लिखे हैं, क्यों आग को पी गए और मुख में क्यों पी, अग्नि पान, एक को दवाग्नि मोचन कहा है सुखदेव गोस्वामी ने और यहां पर दवाग्नि पान कहे है इस अध्याय। तो ये दोनों को पिए थे, लेकिन यहां पर जैसे पीने जैसा वो किए होंगे, सुखदेव गोस्वामी तो देख रहे थे, ये तो आंख बंद किए नहीं थे, गोप आंख बंद किए थे वे नहीं देखे, लेकिन कथा कहने वाले सुखदेव गोस्वामी आंख बंद किए हुए गोपों को और दवाग्नि पीते हुए कृष्ण को दोनों को बारी बारी से देख रहे हैं। तो पिए होंगे श्री कृष्ण, तो क्यों मुख से पिए कहते हैं, निःसंक अग्नि विभुपाद भाज सुक्षुद्राश्चकोराय पिभक्षयन्ती अद्धा तु तद वंश भवोस्मि तन्मे का नाम भी अपि बन मुखे न। भगवान ने सोचा कि चकोर एक छोटा सा तुच्छ पक्षी है और वह चंद्रमा से केवल प्रेम करने के कारण इतना शक्ति पा जाता है कि वो अंगार पी जाता है, तो मैं तो उस वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं, तो मैं क्यों नहीं आग पी सकता हूं। भगवान ने विचार किया, चंद्रमा से प्रेम करने वाला चकोर एक छोटा सा पक्षी भी आग पी जाता है, तो मैं तो उसी वंश का सदस्य हूं, उस वंश में जन्म लिया हूं, तो मैं क्यों नहीं आग पीऊंगा। और भगवान ने थोड़ा बड़ा आग पी करके दिखाया कि चंद्रमा से प्रेम करने वाला आग पी जाता है, कहने का आशय ये है। तो मैं चंद्र वंश में हूं तो इसलिए मैं भी पीऊंगा, जब चकोर पी रहा है तो मैं भी पीऊंगा। शायद भगवान ने सोचा होगा, एक क्षण में भगवान कुछ भी सोच सकते हैं। जब दूसरा भाव लिखते हैं, सख्युर ममय सही दधाति धनंजयस्य नामे तद्वद अयम अतुल प्रियो ने इत्याशया स्वजन भक्ति बसव बसम बदात्मा तत्प्रासनात किम करो तमिह स्वमुख्यम। भगवान ने सोचा कि हमारा एक प्रिय सखा है, होने वाले हैं, उनका नाम होगा धनंजय अर्जुन, अर्जुन का एक नाम है धनंजय और अग्नि का भी एक नाम है धनंजय, क्योंकि सोना जो है वो अग्नि का उत्पादन माना जाता है, अग्नि का पुत्र माना जाता है, और अग्नि में हवन करके लोग स्वर्ग को जीतते हैं, इसलिए अग्नि को धनंजय कहा गया, धन देता है। बलि महाराज ने भी यज्ञ किया तब स्वर्ग को जीते, तो अग्नि का नाम ही है धनंजय। तो भगवान ने सोचा यह अग्नि ऐसा है जिसका नाम मेरे मित्र के नाम पर है, तो मैं धनंजय को आगे चलकर मुख्य बनाऊंगा भक्तों में। मुख्य का अर्थ है मुख संबंधी और मुख्य का अर्थ है श्रेष्ठ, तो एक ही शब्द से दो अर्थ लेते हैं, मुख्य बनाऊंगा मुख्य संबंधी। तो भगवान ने शायद इसी से धनंजय को मुख्य बनाया, अपने मुख से संबंधित किया, ये ठीक ही किया। धनंजय नाम होने से अग्नि को उन्होंने मुख्य बनाकर यह सिद्ध किया कि अर्जुन को मैं सबसे मुख्य भक्त बनाऊंगा। बड़े ही सुंदर भाव हैं और सब सही हो सकते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो कई बातें सोच लेता है, तो भगवान क्या क्या अपने मन में सोचे होंगे। भगवान के मन में घुस करके हरिसूरी जी ये भाव निकाल रहे हैं, ऐसा शायद भगवान ने सोचा होगा। तीसरा भाव लिखते हैं, स्वकारणम कार्य लयस्तु लोके प्रसिद्ध एवेत अनलमा विचारा लयम निनायति दया घनोसव कृपीट जोनी बदनाम बुझाते। कारण में कार्य का लय होता ही है, ये हमेशा देखा गया है, शास्त्र का सिद्धांत है और लोक सिद्ध सिद्धांत है। जिस वस्तु से जो वस्तु उत्पन्न होती है अंत में उसका लय वहीं हो जाता है, तो मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है तो मुख में चला गया, तो स्वाभाविक हुआ, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ है, पुरुष सूक्त में बात आई है मुखाद अग्नि रजायत, तो जहां से जिसका जन्म हुआ वहां उसका लय हो गया, जन्म हुआ था ना वन में आग का, तो जन्म हुआ तो कारण आखिर आग का क्या है, भगवान का मुख, मुख से ही अग्नि का जन्म है, तो उख ये आग जब बुझी कार्य कहेंगे लपट को आग प्रकट को और कारण में समा गए, भगवान के मुख में समा गए, खत्म हो गए, स्वाभाविक। तो अपने कारण में अग्नि लीन हो गया, तो भगवान ने सोचा कि अग्नि का कारण क्या है, तो उन्होंने सोचा हमारा मुख, तो इसको मुख में रखो, खत्म करो, बुझा दो, अपने स्थान पर हो जाए, बहुत सुंदर है, उससे अच्छा है। और कह रहे हैं, अग्नि मुखा वही देवास तन्नाथो हम तथा कथम नास्मि इति किं तत्पान विषाद अग्नि मुखत्वम सब विषदम एव अदधात। भगवान ने सोचा कि देवता लोग अग्नि मुख है, अग्नि के मुख से खाते हैं, तो अग्नि मुख उनको कहते ही हैं, तो जितने अग्नि मुख हैं उनका सरदार तो मैं हूँ और मैं विनयाग मुख में विनयाग वाला रहूं। जो साधारण देवता भी अग्नि मुख कहे जाते हैं तो मैं तो दवाग्नि मुख बनकर रहूंगा, तो महा अग्नि मुख हूँ, सबका पूज्य हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसलिए भगवान ने अग्नि को अपने मुख में रखा, हम क्यों कम रहे। सबका ब्राह्मण और अग्नि ये देवताओं के और भगवान के मुख माने जाते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख में हवन करने पर वो वस्तु भगवान के पास चली जाती है, देवताओं के पास, और अग्नि में हवन करने पर, तो इसलिए देवताओं को अग्नि मुख कहते हैं। तो भगवान शायद प्रतिस्पर्धा किए, छोटे छोटे देवताओं को अग्नि मुख कहा जाता है और मैं सबका पूज्य हूँ, तो मैं क्यों नहीं अग्नि मुख रहूंगा। तो आगे चल करके हमको लोग कहेंगे कि देवताओं के भी ये मुख्य हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान ने अग्नि पिया, नहीं तो अपने में कमी देख रहे थे। बहुत अच्छा किया, अपनी कीर्ति की रक्षा किया भगवान ने आग पीकर। और उष्णेन जाति समम उष्णमिति प्रसिद्ध शास्त्रानुभूति कुटुकी धृतचित्र कार्य प्राक प्रासितानल भव तनुदाह शांत्यर्थम भूयो अग्निपान मकरो किलु वासुदेव। ऐसा कहा गया है कि उष्ण की औषधि उष्ण है, किसी के शरीर में आग से कहीं जलन हो जाए तो आप ठंडा पानी नहीं डाल सकते हैं, तो उष्ण को शांत करने के लिए उष्ण चाहिए, गर्म चाहिए। तो शायद भगवान ने सोचा कि पहले जो आग पिया हूं उसकी गर्मी शांत होगी, दूसरी बार आग पीऊंगा तब, तो यह सोच करके प्रथम अग्निपान की उष्णता को के प्रशमन के लिए वासुदेव फिर से आग पिए, ऐसा लगता है। आग पी गए। मुख्य बात यह है कि भगवान आग पी रहे, उनके सुंदर अधर में जिह्वा में आग सट रहा है, जा रहा है, तो आखिर उपेक्षा तो होनी ही चाहिए, क्यों पिए कैसे पिए, स्वाभाविक उपेक्षा करना। अच्छा, जतो हृदय मेति तद विलय मेति तत्व तत्श्रुति नीतम प्रभु परमम अर्थम आलोचन जतो जतो बत दबो जत बतो दयो धुना भौतिक कान नोत्था स्व कान ने तदुचित लय तदिति किं तथा संबधे। यह कह रहे हैं कि शास्त्र कहता है कि यह जगत ये कोई भी वस्तु जन्मादेश से जत जहां से इसका उदय हुआ है वहीं पर लय होती है वस्तु, ये सारा जगत वहीं लय होता है, भगवान सृष्टि के कारण है और लय भी भगवान में हो जाता है। तो यह आग कहाँ उत्पन्न हुआ है, कानन में, कानन मतलब वन होता है। तो भगवान ने सोचा कि कानन में यह अग्नि उत्पन्न हुआ है तो मैं भी स्व कानन में क्यों नहीं इसको रख लूं। स्व स्व का आनन, आनन मतलब मुख, भगवान ने सोचा कानन के अग्नि को स्व कानन में क्यों नहीं रख लूं, स्व आनन में, अपने आनन में रख लूं। उसे कानन और आनन ये दो शब्द, कानन माने वन, आनन माने मुख, और स्व माने अपने। जब हमारे कानन में, हमारे वृंदावन में यह आग उत्पन्न हुई है तो अपने ही कानन में क्यों नहीं रखूं इसको, स्व कानन में। संस्कृत के रचना के अनुसार बहुत ही आनंददायी शब्द है, स्व कानन में वह आग उत्पन्न हुई भगवान के। स्व कानन का अर्थ है अपने कानन में, और यहां स्व क एक जगह रखेंगे तो आनन में, अपने कानन में उत्पन्न अग्नि को अपने आनन में रख लिए तो ठीक ही किए, क्योंकि शास्त्र के सिद्धांत की भगवान ने रक्षा किया, जहां से जो वस्तु उत्पन्न हुई है वहीं उसका लय होना चाहिए।